सभी वैष्णव की आज इस श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण एवं चर्चा में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक 11 के बारे में चर्चा करेंगे। नारकीय लोगों का वर्णन। ये त्विह यथै वामुना विहिंसिता जनत्वः परत्र यम यातना मुपगतम त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मा द्रौरवमित्याहु रुरुरिति सर्पादति क्रूरसत्वस्यापदेशः। Translation and Rupantar by Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है, अतः मृत्यु के पश्चात उसको यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्मा उसके द्वारा पीड़ित किए गए हैं गए थे वे रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होते हैं और उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी के अनुसार रुरु को भार श्रृंग अति क्रूरस्य भार श्रृंगाख्य सत्वस्य अपदेशः संज्ञा भी कहा जाता है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इसकी पुष्टि की है। रुरु शब्दस्य स्वयं मुनि नैव टीका विधानाल्लो कैश्व प्रसिद्ध एवायम जंतु विशेषः। इस प्रकार भले ही इस जगत में रुरु दिखाई न पड़ते हो लेकिन शास्त्रों से इनके अस्तित्व की पुष्टि होती है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थातितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं तदाति स्वकदामकितं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री रूपम साग्रजातम सहगणा रघुतातम विताम ताम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदाम सहगण ललिता श्री विशाखम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्य। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब कलयुग की शुरुआत होती है तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाहरी लीला समाप्त करते हैं और तब उस अंधकारमय के समय में एक और सूर्य का जो है उदय होता है वह है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के द्वारा एक ऐसा सूर्य है जो हमें यह भौतिक और परलोक आध्यात्मिक जगत के बारे में हमें सारी वहाँ की जो सच्चाई जो है वो हमारे सामने दृश्यमान करते हैं। और आज इस श्लोक के द्वारा हम किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम रूपी यह जो सूर्य जो है जो कलयुग में हमें एक ऐसे अंधकारमय जगत जो है एक अलग प्लेनेट है जिसे कहते हैं पाताल लोक, उसके बारे में हमें थोड़ा सा दृश्यमान करते हैं। आइए श्रील प्रभुपाद और बाकी के उनके पद कमलों में चलते हुए वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। थोड़े दिन पहले हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु के साथ हम जब चर्चा कर रहे थे कोर ग्रुप मीटिंग में, जैसे प्रभु जी एडिटर हैं तो बहुत सुंदर चीजें कहते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी को अपनी नैया के साथ जो लाइट हाउस होता है उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लाइट हाउस ये प्रिंसिपल के समान है, नियमावली के समान है, और कोई अपनी नौका से उस प्रिंसिपल को, नौका से लाइट हाउस को अगर तोड़ने की कोशिश करता है तो उस लाइट हाउस को कुछ होता नहीं है, होता है वह नौका ही टूट जाती है। क्यों? कि वो जो लाइट हाउस जो बनता है उस जिस पानी के ऊपर वो खड़ा है उस पानी के नीचे सॉलिड पत्थर उसके ऊपर उसका जो मुख्य जो है आधार रहता है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में अलग अलग युगों के जीवों के लिए दिशा देने के लिए यह लाइट हाउस जो वैदिक प्रिंसिपल्स जो है, वैदिक जो नियमावली है उसका ये लाइट हाउस बना है, प्रिंसिपल्स जो हमें श्रीमद् भागवतम के द्वारा प्रमाणित होता है। लेकिन सतयुग से लेके हर युग में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की समाज, अलग अलग प्रकार की मानसिकता, इसी प्रकार को प्रिंसिपल्स को तोड़ने की साजिश करते हैं। और उस प्रिंसिपल को तोड़ने की साजिश में क्या परिणाम होता है उसका एक छोटा सा उदाहरण यह रौरव नरक के रूप में हमें बताया जाता है। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जब हम किसी और व्यक्ति को अत्यंत दुख देकर, पीड़ा देकर, जब हम अपना भरण पोषण, ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है और इस हिंसक कृत्य के रूप में क्या फल मिलता है। रव रव नाम के यह जो प्राणी जो होते हैं यह इस भौतिक जगत में सबसे ईर्ष्यालु कोई व्यक्ति अगर जीव जो होता है तो वह है सर्प और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। आप अगर कभी क्लोजअप में सर्प और मगरमच्छ की आंखों में अगर झांको तो इस ईर्ष्या का सर्वोत्तम पना उनकी आंखों में दिखाई देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इसी सर्प के भांति ईर्ष्यालु व्यक्तिमत के द्वारा, देखो सर्प हमेशा किसी को दुख देता है, मगरमच्छ जो होता है वो कभी किसी से आप प्यार से बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा, वो हमेशा किसी को दुख देता है। तो उसी दुख के रूप में जब वह व्यक्ति जिसने दुख दिया है वो नरक लोक में जाता है तो रव रव नाम के नरक में रव रव नाम के जो पक्षी होते हैं, जो जीव जो होते हैं, वो इस सर्प से भी कई गुना ज्यादा ईर्ष्यालु होता है। हम जब नियमों को बात करते हैं तो जब हम ट्रैफिक सिग्नल हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, ग्रीन सिग्नल होता है, येलो सिग्नल होता है और लाल सिग्नल होता है। आप कभी लाल सिग्नल तोड़ने की अगर कोशिश करो तो काफी शक्यता है आप खुद अपने आप को लाल रंग के खून के पुल में आपको पड़े पाओगे, गिरे हुए पड़ोगे पाओगे। इसी प्रकार से नियमों से अगर आप कोई एक चीज का नियम आप अगर तोड़ोगे इस भौतिक जगत में, तो उसी नियम के मुताबिक उससे कई गुना ज्यादा उस नियम को तोड़ने के लिए जिस प्रकार की मानसिकता आपने वापरी है, उससे कई गुना ज्यादा मानसिकता आपको सफर करने को मिलती है नरक में। हिज होलीनेस गौर गोविंद गोस्वामी महाराज उनकी पुस्तक में बहुत सुंदर से समझाते हैं कि यह जो ईर्ष्या जो है इसका मूल तत्व क्या है। जैसे एक बार हमने चर्चा की थी सरलता के बारे में, वैष्णवता ही सरलता है, यह हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा है। उसी प्रकार से सरलता की अगर विरूपता हम देखने जाए, उसका अगर ऑपोजिट अगर हम देखने जाए तो वह है कपटता या तो कापट्य। यह जो कापट्य जो है यह मूल है इस ईर्ष्या का। जब हृदय में कापट्य होता है उसका उदाहरण हम देखते हैं समुद्र मंथन के समय। जब समुद्र मंथन के समय जो जो अमरत्व जो है उसका जो कुंभ जब बाहर आता है, तब विष्णु यह सोचते हैं कि सर्प से भी ज्यादा विषयमय विषमय यह जो राक्षस है उनको यह अमरत्व मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उसको देने से एक सांप को जैसे हम दूध देते हैं और उससे जो विनाश होता है, ऐसा ही विनाश अमरत्व सांपों के जैसे इस राक्षसों को देके होता है। और इसी के लिए चाणक्य पंडित और श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, दोहराते हैं कि सर्प को शायद आप जड़ी बूटी दवाई या तो मंत्र से वश में कर सकते हो, लेकिन सर्प जैसे ईर्ष्यालु मानसिकता वाले व्यक्तिमत्व को आप कुछ भी करके आप उसे आप वश में नहीं ला सकते हैं। और इसी की वजह से सर्प वाली जो ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होती है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह ईर्ष्यालु व्यक्तिमत्व हमेशा अपने मन अपनी बुद्धि पर मदार रखता है, स्पेक्युलेशन, नियमों को और वैष्णव आचार्यों को और शास्त्र को अपने सामने वो नहीं रखता है। उदाहरण है इसी कथा में जब आगे जाते हैं, जब मोहिनी मूर्ति के रूप में विष्णु स्वतः आते हैं, तब वही राक्षसी मानसिकता वाले जो राक्षस है वो सोचते हैं कि अब तक तो हमने जो है यह जो अमरत्व का कुंभ अभी पा ही लिया है, अब थोड़ी ही देर तो बाकी है। देखिए जीवन में सरलता और कापट्य के बीच में सरलता व्यक्ति वाली मानसिकता सरल रहती है और कापट्य उसका मतलब है क्रुकेड, क्रुकेड व्यक्ति वाली मानसिकता हमेशा वो टेढ़ा सोचती है। देवता ने पहले वासुकी का सर के बाजू पकड़े खड़े थे चर्निंग होने के पहले और राक्षसों को पूंछ मिली थी, लेकिन क्रुकेड मानसिकता थी, सरलता नहीं थी, तो अरे ये देवता मुंह के पास क्यों पकड़ के खड़ा है, कुछ वहां पर फायदा होगा, एक्सचेंज हो जाता है। और देवता आते हैं पूंछ के पास और राक्षस आते हैं वासुकी के मुंह के पास, और बाद में हम जानते हैं कि वह मानसिकता स्पेक्युलेशन के वजह से अंत में उन्हें कितना सहन करना पड़ता है। उसी तरह से मोहिनी के रूप में भी वे सोचते हैं कि अब मोहिनी हमें ही देने वाली है, लेकिन जब स्पेक्युलेशन होता है, जब शास्त्रों का, गुरु परंपरा का जब आधार नहीं होता है, तब हमेशा जो है हार ही मानना पड़ता है। कापट्य और पतित्य, ये दोनों चीज में एक समानता भी है और एक अलगता भी है। जो मानसिकता रहती है कि किसी को दुख पाकर, किसी को हीनता देकर अगर हम सुख पाते हैं, तो वह प्रकार की मानसिकता यह हीनता भी बनाती है, बताती है। लेकिन पतित्य जो है, हीनता के सिवाय जो पतितता जो है, यह पतितता में थोड़ा सा फर्क है। वैष्णव को बताया गया है पतित पावन, लेकिन हमने कहीं पर भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वैष्णव जो है वो कपट पावन है। सुना है हमने? नहीं। तो इसी के वजह से हम भजन सुनते के पतित तमार, पतित पावन हेतु तोर अवतार, चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लिखते हैं। सो ये पतित पावन भगवान जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में के रूप में आते हैं, और उनके फॉलोअर्स आचार्य जो है वे पतित पावन हैं। लेकिन महाराज लिखते हैं, हिज होलीनेस गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, साधु गुरु वैष्णव पतित पावन, कपट पावन नाही। अगर किसी पतित के हृदय में दुख है, जेन्युइनली वो सोचता है कि मैं पतित हूं, और उसके हृदय में सरलता है और वो मानता है मैं पतित हूं, भगवान और उनके द्वारा तैयार की गई ये सारी वैष्णव परंपरा की मशीनरी जो है उस पतित पावन का उद्धार करेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में कपटता है, उसका उद्धार होना बहुत ही मुश्किल है। पॉलिटिक्स, क्रूकेडनेस, कपटता और पॉलिटिक्स साथ साथ में चलता है। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज डेफिनेशन देते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब ऐसे कार्य जिसमें स्वार्थ मुख्य रहता है। मोटिवेशन इज अ सेल्फिशनेस, इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। और उसी के साथ लाभ, खुद की पूजा और प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें जो है वो कापट्य के साथ में जाते हैं। ऐसे कहा गया है वैष्णव आचार्य द्वारा कि प्रतिष्ठा यह शुकरेर विष्ठा, हॉग्स स्टूल कहा गया है। और साथ में यह भी कहा गया है कि कापट्य इज अ पारामोर ऑफ प्रतिष्ठा, कापट्य तदुपपति, तदउपपति का अर्थ है कि वह उसकी जो है एक बहुत ही क्लोज सहेली है प्रतिष्ठा की। तो जहां कापट्य होता है वहां प्रतिष्ठा होता ही है। और वैष्णव आचार्य कहते हैं कि यह एक स्वपचिनिक है। स्वपचिनिक का मतलब है कि एक ऐसी चंडालिनी जी है। मन शिक्षा में बताया गया है कि मन को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि ये ऐसी चंडालिनी जो है जो तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी, जो कुत्ते का मांस खाने वाली निम्न प्रकृति की व्यक्तिमत्व है, वह अगर हृदय में रहेगा, रहेगी, तो भगवान का प्रेम कैसे हृदय में उग सकेगा। तो इस प्रकार से कापट्य प्रतिष्ठा के साथ में असहनशीलता और ईर्ष्या भी इसी प्रकार के व्यक्तिमत्व के हृदय में रहता है। और यह ईर्ष्या और ये असहनशीलता हम उदाहरण के रूप में अगर देखें तो शुक्राचार्य और बलि महाराज के प्रसंग में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भौतिक जगत में मालिक होने की ये जो भावना है, आज कलयुग में आप देखो किस प्रकार से दुखों को, लोगों को दुख देने की मानसिकता किस हद तक फैली है। हम सोच भी नहीं सकते हैं इतनी क्रूरता समाज में पर्दे के पीछे जीवों के ऊपर होता है। श्रील प्रभुपाद एक जगह पर भागवतम में लिखते हैं कि पशुओं के लिए कलयुग का अभी का समय जो है वो नरक से कुछ कम नहीं है। जो चीज हम नरक में हमें जो मिलना वाला हम देखने वाले हैं, वही चीज पशु जाति के साथ हम मनुष्य कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से मनुष्य को जो वैभव मिला है, एक देश में जहां बहुत ऐश्वर्य है उसमें साल में एक बहुत ही बड़ा उत्सव होता है। वो उत्सव क्या होता है? एक बड़ी बड़ी होटल में अमीरों के अमीरों के अमीर ही वहां पर जा सकते हैं, साधारण अमीर नहीं जा सकता है वहां पर। और उस होटल में क्या होता है? प्राणियों को, जंतुओं को जिंदा पकाया जाता है। प्राणियों के शरीर के अंगों की अलग अलग प्रकार की क्रूरता से बनी हुई वो लोग वानगियां बनाते हैं। और फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए आगे का जो समय क्या आएगा, यह श्रीमद् भागवतम में के इस पन्नों में हमें दिखाई देता है कि रव रव नाम के जो प्राणी जो है वो सर्प से भी ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं। आपको शरीर को वो मांस के टुकड़े टुकड़े वो खींच के निकाल देते और फिर भी आपकी मृत्यु नहीं होती है। और इस क्रिमिनल माइंडसेट, जो एक दोषित माइंडसेट को इस प्रकार से दोष मिलता है। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि जब रौरव ये जो प्राणी कौन होता है, श्रीम अभी श्रीमद भागवतम ने हमने पढ़ा कि रौरव प्राणी वो होते हैं जिन प्राणियों पर दुख दिया गया होता है, जिस मनुष्य ने किसी जीव पर दुख किया होता है वही व्यक्ति रिवेंज बदला लेने के लिए रौरव नरक में आता है और फिर वह उस प्राणी बनकर उसी व्यक्ति को दुख देता है। सोचिए हम सब हमारे जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा हम पर भी कोई अन्याय, कोई दुख, कोई असहन होने वाला बिहेवियर हम पर हुआ रहता है। लेकिन अगर वह विष हम अगर हमारे हृदय में लेकर चलेंगे, सोचिए हमें खुद को शायद रौरव बनना पड़े। इट्स अ ग्रेट रिस्क। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि जब मिस्टर नायर के द्वारा जब लड़ाई जब चल रही थी और श्रील प्रभुपाद के शब्दों के द्वारा शब्दों में ही कहा गया कि इट वॉज अ ग्रेट बैटल, एंड वो बताया गया कि श्री मिस्टर नायर जो जुहू की जन्मन भगवान के मंदिर के लिए मिस्टर एन बहुत ही पावरफुल व्यक्तिमत्व थे। उनके पास पुलिस फोर्स पावर सब कुछ था। और जब एक दिन अचानक समझ लड़ाई के बीच समझ में आया, डिवोटीज ने को फोन आया और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को उत्साह, श्रील प्रभुपाद मिस्टर एन अब नहीं रहे, श्रील प्रभुपाद वो सर्प के समान थे, उन्हें नरक मिलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तब हमें समझाते हैं, दिखाते हैं, वे अपने दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, वे और कुछ नहीं बोलते। और वही लड़ाई के बाद इतने ईर्ष्यालु सर्प समान व्यक्तिमत्व के पत्नी के साथ जब फाइनल पेपर पे जब सिग्नेचर होता है, तब श्रील प्रभुपाद मिस्टर एन की पत्नी को कहते हैं, कृपया आप डरिएगा मत, आप चिंता मत करिएगा, मैं आपके पिता के समान हूं, कभी भी मेरी जरूरत पड़ी आप मुझे बुला सकते हैं। तो वैष्णव को जो है ईर्ष्या जो है, ये ईर्ष्या से चाहे वो बदले की भावना भी क्या होना हो, लेकिन इस ईर्ष्या से वैष्णव को हमेशा अपने आप को जो है वह बचा के रखना चाहिए। आगे 9th कैंटो में हम उसके पहले शुक्राचार्य के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से शुक्राचार्य के हृदय की ईर्ष्या बलि महाराज को भगवान को शरणागति से रोकने की कोशिश करता है। और शास्त्रों में लिखा है वही शुक्राचार्य की मानसिकता और उसी मानसिकता के द्वारा उनके वंशज आज भी उसी ईर्ष्या का प्रतीक लेकर समाज में अलग अलग हिस्सों में आज भी बांटे गए हैं। और वे जो यह जो श्रीमद् भागवतम ये जो श्लोक है दूसरों को दुख देना दूसरों को हमेशा तकलीफ देना वह मानसिकता लेकर आज भी वे समाज में फैले हुए हैं। 9th कैंटो में ययाति महाराज कहते हैं कि जिसके हृदय में लोभ और कामना है और ईर्ष्या है उसको चाहे सारे जगत के अन्न धान्य मिल जाए उसे चाहे सारे विश्व का सोना और चांदी मिल जाए उसे चाहे हर जीव पर राज्य करने की शासन करने की पदवी मिल जाए और सारे पृथ्वी की स्त्रियां उपभोग करने के मिल जाए तो भी वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा क्योंकि ईर्ष्या मोह और लोभ का यह स्वभाव है जो अगले नेक्स्ट श्लोक में बताया जाता है कि जिस प्रकार से अग्नि में हम अगर घी डालेंगे पेट्रोल डालेंगे तो अग्नि और ही बढ़ती है। और इस प्रकार से यह जो रौरव जो नरक जो है उसके बारे में भागवतम में हमें बताया गया है कि कैसे यह जो जो नरक में ले जाने के लिए जो राक्षस जो होते हैं यमराज के जो दूत होते हैं उसका वर्णन भी दिखाया गया है। हमारे मित्र और शिक्षा गुरु गाइड हिज ग्रेस माधवानंद प्रभु जब छोटे थे शायद वो 5 साल के थे बहुत गांव में थे तब बहुत बुरी तरह से उन्हें दस्त की बीमारी हो गई थी शायद वो बचेंगे नहीं ऐसा लग रहा था। खटिए पे अपने घर में दीवार की ओर मुंह कर सोए थे और वो कह रहे थे कि बचपन में मैंने वो 4 जो यमदूत है जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है बिल्कुल उसी तरह से बड़ी बड़ी लाल आंखें आगे आए हुए दांत जीभ शरीर पर बाल भयानक स्वरूप वो मैंने उनको मेरे सामने आते हुए देखा था। ये सच्चाई है। कई बार बौद्धिकों की चर्चा में हेल है या नहीं स्वर्ग है या नहीं उसके ऊपर डाउट होता है। एक तो है हमारे सामने शास्त्र और अनुभव। हिज ग्रेट श्रीनाथ जी प्रभु का जब दूसरा हार्ट का बाईपास जब सर्जरी हुआ था और सर्जरी होके वे जब व्हील चेयर आईसीयू में उनको व्हील लेके जा रहा था ट्रॉली से लेके जा रहे थे तब वो कह रहे थे मेरे बाजू का ये जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको लेने के लिए यमराज आए हैं कृपया कुछ करिए देखो उसके हाथ में एक बहुत ही एट्रैक्टिव ऐसा एक गोल रंग की कुछ चीज है उससे उस व्यक्ति को उस जीव को लोग आकर्षित कर रहे हैं कुछ करिए। और डॉक्टर्स ने सोचा कि श्रीनाथ जी प्रभु जस्ट अभी सर्जरी के एनेस्थेशिया में से हैं तो ऐसा बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा नींद दे के सुला दिया और नेक्स्ट डे समझ में आया कि बाजू की जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे उसने शरीर छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में जो है यह बताया गया है कि नर्क और नर्क में लेके जाने वाले के लिए यमराज के जो दूत जो होते हैं उनका वर्णन, यह एक सच्चाई है, यह एक परिकल्पना, एक काल्पनिक चीज नहीं है। यमराज से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता है। एक जगह पर कथा है कि एक नौकर था, बड़े मालिक का एक नौकर था। वो नौकर साइकिल लेके, इस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ये कथा कहते हैं कि साइकिल लेके कलकत्ता गए थे अपने मालिक के लिए कुछ लेने के लिए बाजार में, और बाजार में उस नौकर ने देखा कि यमराज वहां पर खड़े थे और उसकी ओर देख रहे थे। तुरंत वो डर के मारे अपने मालिक के पास से आया, मालिक से कहा, मालिक कृपया, कभी मैंने आपसे नहीं मांगा है, आज मुझे आपका घोड़ा दे दीजिए। क्यों घोड़ा चाहिए? नहीं, मैं घोड़ा लेके बहुत दूर तक मैं कहीं चला जाऊंगा, शायद यमराज मुझे आज लेने आए हैं, वो मेरी ओर को देख रहे थे। मालिक ने घोड़ा दे दिया, मालिक आए, यमराज थे, बोले आप क्यों मेरे नौकर की ओर ऐसे देख रहे थे? तो यमराज ने कहा, मैं सोच रहा था कि यह तो यहां कलकत्ता में है और मुझे तो उससे मिलना था उस गांव में, लेकिन वह घोड़ा लेके वही गांव में पहुंच गया जहां पर यमराज उसे मिलने वाले थे। यही कथा एक छोटी सी पंछी की भी है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में हम जानते हैं कि देवता हमेशा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की आरती के लिए आते हैं, और एक दिन एक पंछी जगन्नाथपुरी के मंदिर के कोने में बैठा था और यमराज जी आए, उन्होंने आरती की जगन्नाथ जी की, और एक आश्चर्यचकित एक अलग दृष्टि से उस पंछी की ओर देखा और यमराज जी चले गए। पंछी ने वो दृष्टि देखी और डर गया और सोच रहा था क्या करूं। तुरंत उसने अपने बड़े भाई गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी लगता है आज मेरा दिन आ गया है, कृपया कुछ करिए, मुझे एक माउंट मेरू पर्वत के शिखर पर मुझे आप भेज दीजिएगा, मैं वहां पर मैं शायद बच जाऊंगी। गरुड़ जी लेके गए मेरू पर्वत पर और वापस आते आते रास्ते में यमराज जी बोले, यमराज जी आप छोटे से मेरी बहन पंछी की ओर क्यों आप ऐसे देख रहे थे? नहीं, मैं सोच रहा था कि ये अभी तो जगन्नाथपुरी मंदिर में है और उसका तो मृत्यु मेरू पर्वत के चोटी पर लिखा है, वो वहां पहुंचेगी कैसे, लेकिन अभी वो वहीं पर है, मैं जाके उसे अभी मिल लूंगा। तो इस प्रकार से हम कितना भी हम कोशिश करें लेकिन यमदूत से और हमारे जो कर्म है उससे हम, हमारी बुद्धि से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। एनिमल प्लेनेट नाम का एक मूवी है, उसमें एक सिंह जंगल में जो राजा है, सिंह की कल्पना का तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। उसका दैदीप्यमान, उसकी शक्ति, उसका जो वैभव है, लेकिन एक सीन में ऐसा देखते हो सिंह चलता है और तुरंत अपने पैर को ऐसे जोर से झटकता है, थोड़ा और आगे चलता है और दूसरा पैर झटकता है, और थोड़े ही देर में ये एक राजा जो एक सिंह जो है जंगल का जो राजा है, एक सम्राट है, वो एक अति असहाय स्थिति में जंगल में तड़पता है। कन्वल्जन्स, आकड़ी आती है, बहुत देर तक आकड़ी आती है, और थोड़ी देर के बाद में वो कंफ्यूज्ड अवस्था में वो चलता है और फिर गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो सर्प जो होता है, ये सर्प का जो विष जो होता है वो बड़े बड़े शक्तिमान महान जो व्यक्तिमत्व है उसे भी यह विष जो है उसे असहाय करकर, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जब आप संभ्रमित अवस्था में जंगल में जब चलते हैं तब आप ऐसे खड्डे में गिर जाते हैं, डीप डार्क वेल, जिसमें से आप बाहर आना मुश्किल हो जाता है। हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से हाँ ये जो नरक में जाना है उसमें एक होता है एक शरीर से लेके दूसरे शरीर में रूपांतर रहना। जैसे महाराजा इंद्रदुम्न महाराज जो थे वह मनुष्य जीवन से हाथी बन गए थे। यहां पर हम जैसे देखा कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में हम जा सकते हैं। कई बार जो है भावना, हेलिश भावना, यानी अजामिल एक ब्राह्मण था, उसके हृदय की भावना नरकमय हो गई जब एक वो प्रोस्टिट्यूट के साथ उसका संबंध हुआ। और हायर प्लेनेटरी सिस्टम से आध्यात्मिक जगत से जब जीव जब गिरता है तो वह भौतिक जगत में गिरता है। और एक सबसे बड़ा वैष्णव के लिए हेलिश प्लेनेट है, वह है ब्रह्म ज्योति। जब वैष्णव किसी वजह से मन में भावना रखता है डेविएट होकर कि भगवान से एक हो जाए, तो वह उस वैष्णव के लिए हेलिश प्लेनेट से कम नहीं है, क्योंकि वहां कृष्ण भावना नहीं है। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म लोक में, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना यह एक नरक से, नरकोत्तम से, नरक से सबसे उत्तम, सबसे मलिन जो नरक जो है वो वैष्णव के लिए है, वो है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। एक वैष्णव जो है वो चाहता है कि वो चाहे नरक में भी रहो, लेकिन वो भगवान के चरणों को अगर वो याद रखता है तो वह व्यक्ति जो है वो हमेशा खुश रहता है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में, हम देखते हैं किस प्रकार से प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में रहते भी, इस भौतिक जगत में रहकर भी नरक की सारी यातनाओं से वे जा रहे थे। सोचिए, अग्नि में रखना नरक ही है, सर्पों के बीच में रखना नरक ही है, त्रिशूल तलवार से उन्हें जिंदा काटने की कोशिश करना नरक ही है, हाथी के पैर के नीचे पत्थर से उनको पर्वत से नीचे गिराना यह भी नरक है। लेकिन ये सारी नरकमय परिस्थिति में से जाते हुए भी एक वैष्णव कैसे पेश आता है? हिज होलीनेस आदरणीय स्वामी महाराज एक लेक्चर में कहते हैं कि शिला प्रहलाद महाराज हर इस दुख में ऐसे नहीं कह रहे थे कृपया अब मुझे त्रिशूल से बचाइए, हे कृष्णा कृपया अब मुझे अग्नि से बचाइए, अब मुझे हाथी के पैर से नीचे से बताइए बचाइए, नहीं। प्रहलाद महाराज के हर दुखमय नरकमय यातना में एक ही प्रार्थना थी, कृष्णा कृपया हमेशा हर हमेशा आपके चरणों की ध्यान प्रेम पूर्वक मेरे हृदय में हमेशा रहा करे। तो इस प्रकार से वैष्णव की ये जो भावना जो है, जो वैष्णव किसी भी जगह पर कोई भी परिस्थिति में हमेशा अपने आप को भगवान को याद रखने के लिए कहता है। यह सर्प उसे पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज मायापुर की एक कथा, सच्ची कथा बताते हैं कि एक बार मायापुर में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी गंगा नदी में। कई लोगों के घर बार प्राणी अनाज सब कुछ बह गया था, और एक व्यक्ति एक सूखे बड़े पेड़ के ऊपर आश्रय लेकर बैठा था। कई दिनों तक मदद आ नहीं सकी, लेकिन सोचिए कितना असहाय परिस्थिति होगी कि वो पेड़ पर अकेला है, अकेला नहीं था, खाना नहीं पीना नहीं, पानी के बीच रहते भी बारिश ठंडी, लेकिन साथ में उसके साथ उस पेड़ पर एक सहवासी भी था, और वह था एक कोबरा नाग। कई दिनों तक वह कोबरा, यह व्यक्ति, वह पेड़, और नीचे बहता हुआ गंगा का पानी और ऊपर से बह रहा बस रहा बरस रहा बारिश। वो व्यक्ति सोच रहा था कि ये नाग मुझे काटेगा और डर डर के वो उससे सावचेत रहकर वो वहां रहा। और थोड़े दिनों के बाद महाराज कह रहे हैं कि कहां से एक नौका आई और उस नौका ने उस आदमी को बचाने के लिए नीचे बुलाया। उस व्यक्ति ने सोचा इतने दिन से ये सर्प मेरा संगी रहा है, जा रहा हूं, तो उसने थोड़ा सा ऐसा किया हाथ, जरा सा हाथ उसने आगे लिया और उस सर्प ने काट करके उसको दंश दिया और वहीं पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यह जो मानसिकता होती है ईर्ष्या, हाँ, यह जो मानसिकता सर्प की मानसिकता है उसके ऊपर कभी भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक पत्र में एक भक्त ने उनको लिखा था, एक माता ने, कि न्यूयॉर्क ये ऐसा शहर है यहां पर कोई भी भक्त रह नहीं सकता है। श्रील प्रभुपाद का उसमें जो रिप्लाई है वो बहुत ही सुंदर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो कृष्ण भावनामय जो व्यक्तिमत्व है वह हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे वो नरक में हो या वैकुंठ में हो। उसकी संतुष्टि कोई जगह पर के साथ संबंधित नहीं होता है, लेकिन भगवान और गुरु के लिए जो सेवा है उस सेवा में उसकी हमेशा संतुष्टि रहती है। एंड उसी के वजह से भक्त जो है वो नरक में भी जाने के लिए तैयार रहता है। अभी थोड़े ही दिन पहले हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, आई थिंक उनका एक ऑफरिंग श्रील प्रभुपाद के लिए लिखा था, उन्होंने कह रहे थे जहां तक ओ कृष्णा, जहां तक मेरे गुरु का मिशन खत्म न हो तब तक कृपया मुझे इस भौतिक जगत में बनाए रखिएगा। ये भावना है एक शिष्य की अपने गुरु के साथ, जहां पर भी गुरु हो, कोई भी प्लेनेट में हो, इस भौतिक जगत में कहीं पर भी हो, चाहे वो नरक थोक भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु के सेवा के लिए शिष्य अपने गुरु के साथ कहीं पर भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं वहां पर उसी पर लेटर में बहुत सुंदर लिखते हैं, वी आर रेडी टू गो टू हेल ऑल्सो बट चांट हरे कृष्णा दैट्स ऑल कॉमा फिनिश्ड। अभी श्रील प्रभुपाद के हर शब्दों में बहुत गहनता रहती है। दैट इज ऑल फिनिश्ड, इसके बारे में हम थोड़ा सोचना चाहिए। प्रभुपाद क्या कहना चाहें, नरक में जाके हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं एंड बस दी एंड। तो यह वाक्य समझने के लिए हमें एक छोटी सी कथा सुनना पड़ेगा। एक बार जनक महाराज जो है, जनक महाराज का इस भौतिक लीला का जो समापन होने आया, वैकुंठ से प्लेन आए जिसके ऊपर सुंदर छोटे छोटे बेल्स थे और वैकुंठ से वो जा रहे थे, पृथ्वी लोक से वो वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे आध्यात्मिक जगत की ओर, और तब उनका प्लेन जो है वो नरक की ओर से गया। और जब नरक में उनको शरीर से लगता हुआ वायु जब नरकवासी को जब पहुंचा तब नरकवासियों की पीड़ा में बहुत सांत्वना हुई और उन्हें सभी ने जोरों से रिक्वेस्ट किए, जनक महाराज आप थोड़े समय हमारे नरक के अंदर मत आइए, आप सिर्फ दरवाजे के ऊपर रुकिए, आपके शरीर को आग लग के आया हुआ है जो मंद मंद वायु है उससे हमें बहुत सांत्वना मिलती है। जनक महाराज वहीं पर रुक गए। थोड़े देर के बाद में यमराज वहां से जा रहे हैं, जनक महाराज आप यहां पर कहां रहे हैं, आपको वैकुंठ का आपका निगमन है, प्लेन आपके लिए आया है लेने के लिए, कृपया आप वैकुंठ की ओर गमन कीजिए। जनक महाराज कहते हैं यमराज जी मेरे यहां अगर रहने से इस नरकवासियों को अगर थोड़ी सांत्वना मिलती है तो मैं यहीं पर रहने के लिए तैयार हूं,
कृपया मुझे बताइए कैसे मैं इनका दुख दूर कर सकता हूं। यमराज भी महाजन थे और उन्होंने सोचा और कहा, महाराज जनक, आपने आपके जीवन में एक बार अति तीव्रता से हृदय पूर्वक असहायता से श्री राम का एक बार नाम लिया था। आप अगर यह राम नाम का जो आपने लिया था उसका जो फल है, सिर्फ एक ही बार राम का नाम जो असहायता लिया था वह फल अगर आप इस नरकवासी को दो तो सारे नरकवासी जो है उनका उद्धार हो जाएगा। और लो एंड बिहोल्ड, सारे नरकवासी का उद्धार हो जाता है। तो यहां पर एक शुद्ध वैष्णव का आश्रय, भगवान के नाम और वैष्णव की कृपा जब मिलती है तब नरक की जो यातना है वो जो हमेशा के लिए चली जाती है। तो ये हमारे जीवन में ये हमारा भाग्य है कि शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए इस प्रकार के जनक महाराज के पद चिन्हों में चलने वाले ऐसे अनेकों अनेक अगणित वैष्णव तैयार किए हैं जो सिर्फ नरक की ही यातना को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं है। शिला प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं, कन्वर्सेशन में है, लॉस एंजेलिस 22 जून 1975 में उनके कन्वर्सेशन में बताया गया कि हम कहीं पर भी कोई भी कॉर्नर में, कोई भी बिल्डिंग में, कोई भी एयरप्लेन में, चाहे किसी नरक में भी, हम या तो भारत हो या तो लॉस एंजेलिस हो, कहीं पर में हम कहां हो यह महत्व का नहीं रखता है, मेरी क्या पोजीशन है यह महत्व का नहीं रखता है, हम सिर्फ भगवान के नाम का चांटिंग करते जाएंगे, दैट इज ऑल। अगेन शिला प्रभुपाद लिखता है, दैट इज ऑल एंड दिस इज डिवोटी एंड देयरफॉर ही इज हैप्पी। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, चांट एंड बी हैप्पी, चांट एंड बी हैप्पी, इस वाक्य के पीछे ये हैप्पीनेस किसी जगह किसी व्यक्तिमत्व के साथ नहीं संबंधित है, एवरीवेयर वेदर इट इज हेल इंडिया कॉर्नर, और इस वाक्य के द्वारा हम सोच सकते हैं कैसे शिला प्रभुपाद इज इवन मोर मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल इन गुरु परंपरा ऑफ जनक महाराज, कि शिला प्रभुपाद यहां पर बिल्डिंग की कॉर्नर, एरोप्लेन, पृथ्वी, नर्क, कहीं पर भी हर जगह पर शिला प्रभुपाद प्रिवेंटिव मेजर, आजकल मॉडर्न मेडिसिन में प्रिवेंटिव मेडिसिन अब बहुत ही बड़ा उसका स्थान, जो जिसे हम पहले कुछ ध्यान नहीं देते थे, शिला प्रभुपाद यहां पर प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, नर्क में जाने के पहले ही चाहे कॉर्नर, चाहे बिल्डिंग, चाहे भारत, चाहे लॉस एंजेलिस और इवन नर्क भी हो, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जीवों का जो है उद्धार करने के लिए शिला प्रभुपाद ने हमारे बीच ऐसे महान वैष्णव जो जनक महाराज की स्टेप्स में चलकर जीवों का उद्धार करने के लिए उत्सुक है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय हो, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी हो तो आई एम सॉरी। जय शिला प्रभुपाद की जय हो।